मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 9 दिसंबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 9 नौजवान साथियों ने मुझे अपना स्वागत करने का अवसर प्रदान किया है। ये वे नौजवान साथी हैं जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सजल बख्श राय जो विश्रामपुर जिला पलामू से हैं, ब्रिजेश चौधरी आप अलीगढ़ से हैं, हरि ओम तिवारी इलाहाबाद से हैं, मनप्रीत कौर छाबड़ा बिलासपुर से हैं, संदीप कुमार यमुनानगर से हैं, मोहम्मद सलीम आप इलाहाबाद से हैं, भुवनेश्वर कुमार साहू बलौदा छत्तीसगढ़ से हैं, विकास चौहान हरिद्वार से हैं और हरिद्वार से ही हैं सिकंदर सिंह। तो सजल, ब्रिजेश, हरिओम, मनप्रीत, संदीप, मोहम्मद सलीम, भुवनेश्वर, विकास और सिकंदर आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके यहां एकेडमी में आने में अभी जितने दिन बचे हुए हैं इन बचे हुए दिनों का पूरा पूरा इस्तेमाल आप अपनी मानसिक तैयारी के लिए करेंगे। और मानसिक तैयारी होती क्या है फ्रेंड्स, सच पूछिए तो उसी की चर्चा हम सब लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्वागत के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। मित्रों, सच पूछे तो लाइफ मैनेजमेंट वाले भाग को आप सबका जितना अधिक प्यार मिल रहा है वह मेरे लिए बहुत ही अधिक आत्मसंतोष प्रदान करने वाला है, साथ ही साथ मेरे उत्साह को बहुत अधिक बढ़ाने वाला भी है। कल मुझे एक मेल मिला है विजय प्रताप जी का जो गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके मेल से साफ लग रहा है कि ये पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट नहीं हैं, पेरेंट्स हैं। इनके जो बच्चे हैं वो इस पूरे के पूरे डेली ऑडियो को सुनते हैं, ये खुद भी सब परिवार इसके लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से इन्होंने अपने पड़ोसियों से भी इसके बारे में चर्चा की, मोहल्ले वालों को भी अब इसकी एक तरीके से सुनने की आदत सी पड़ गई है और जिसका श्रेय विजय प्रताप जी को ही जाता है। विजय प्रताप जी, आपके इस मेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खासकर इसको जो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इस उदार प्रयास के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। दरअसल मित्रों, इसका एक कारण है जो मुझे अपनी तरफ से समझ में आता है, वो ये है कि जिंदगी हम सब जीते ही हैं और सच पूछे तो जिंदगी जीने के लिए ही है। और जिंदगी तभी तक है जब तक कि हम इसे जी रहे हैं। जब जीना बंद कर देते हैं तो सच पूछे तो जिंदगी रही नहीं जाती है। तो जिंदगी जीने का नाम है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं। मित्रों, दो अलग अलग भाग हैं जीवन के। एक होता है जीवन को जीना और दूसरा भाग होता है जीवन को बनाना। बनाने के अंतर्गत मैं जहां तक समझता हूं अपनी तरफ से वो ये है कि इसको जीने के लिए हमें कुछ बनना पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि कुछ करना पड़ता है। तो वो हो गया जीवन को बनाना। हम सब जिस दिन पैदा होते हैं बच्चे ही होते हैं, माँ की गोद में खेलते हैं, घर परिवार में चहक कर लड़ झगड़ कर सीख कर बड़े होते हैं। अभी तक हम कुछ भी नहीं हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पोते हैं, बस इतने ही हैं। एक नाम दे दिया जाता है और हमें उस नाम से जाना जाता है। कुछ समय के बाद, कुछ ही दिनों के समय के बाद हमारे जिंदगी के बनने की शुरुआत होती है और हम उसे बनाने में लग जाते हैं। और खासकर जब वो दौर खत्म होता है जिंदगी को बनने का, जिंदगी को बनाने का, तब फिर हम अलग नाम से जाना जाने लगते हैं कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये दुकानदार है, ये किसान है, ये फलाना है, ये फलाना है। यानी कि जिंदगी बन गई, ये है जिंदगी का बनना। इसका जो दूसरा भाग होता है मित्रों, वो होता है जिंदगी को जीना। मैं जिस जिंदगी को जीने की बात कह रहा हूं वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो जैविक नहीं है। यानी कि उसका सांस लेकर के दिल को धड़काने से ही संबंध नहीं है। नो डाउट कि शरीर एक अगर यंत्र है, और यंत्र है ही, जैविक यंत्र है, तो उसके संचालन के लिए, उसके कंडक्शन के लिए, उसके ऑपरेट होने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं कि हमारी सांस चलती रहे, हमारा ब्लड सर्कुलेट करता रहे, हमारा दिल धड़कता रहे, पलकें गिरती रहें, ये सारे उसके बायोलॉजिकल एक्शन हैं जो होने ही चाहिए और वो होते ही हैं। इसके रुकने का मतलब है जिंदगी का रुक जाना, जिंदगी का खत्म हो जाना। लेकिन मित्रों, इसकी जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के बारे में मैं जिंदगी को जीने का नाम दे रहा हूं, वो क्वालिटी कहां से आएगी, उस क्वालिटी के लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मित्रों, वो ये है कि जिंदगी की क्वालिटी को हम बदलें कैसे। इसके बारे में अभी तक मुझे जो दिखाई देता है वो दो स्पष्ट अलग अलग धाराएं हैं। पहली धारा धर्म की है, रिलीजन की है, और ये पूरी दुनिया में है। हमको लगता है कि धर्म के माध्यम से हम जीवन को बदल सकते हैं, और सच पूछिए लगता क्या है, था ही धर्म, आया ही था हम वो हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को धारण करने के लिए, या उन मूल्यों को लेकर के वो आया था कि हम अपने जीवन में उन मूल्यों को धारण करें। क्षमा, करुणा, सहनशीलता, यही धर्म के लक्षण है, जो मनुस्मृति ने अपने 10वें अध्याय में ये बात कही भी है साफ तौर पर कि ये धर्म है। लेकिन धीरे 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 वो धर्म कर्म कांड में बदल गया, और जैसे ही धर्म कर्म कांड में बदला तो जीवन की गुणवत्ता को बदलने की ताकत उसमें खत्म हो गई, धीरे 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 करके कम हो गई, ये कह लीजिए खत्म नहीं भी हुई तो काफी कम हो गई, और यहां तक इतनी कम हो गई कि सच पूछे तो उसका प्रभाव अलग से देखना, जांचना, परखना मुश्किल हो गया, बल्कि कहीं ना कहीं तो वो बड़ा आप कह लीजिए कि उल्टा ही प्रभाव वाला हो गया, कि हमको लगता है कि ये करने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और पता लगा बदलने की जगह वो और भी ज्यादा बदतर हो रही है। ये पहला पार्ट चला। दूसरा जो पार्ट जीवन को बदलने का आया वो भौतिकवादी पक्ष का था, मेटलिस्टिक अप्रोच वाला था। और इस मेटलिस्टिक अप्रोच में क्या हुआ, मैं आईएएस अफसर बन जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मैं अगर ये गाड़ी खरीद लूं और मेरा अपना मकान तैयार हो जाए तो नो डाउट तो फिर मेरी जिंदगी बड़ी सुखी सुखमय हो जाएगी, शादी हो जाए तो जिंदगी सुखमय हो जाएगी, मैं अपने शहर को बदल दूं तो मेरी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, और पता नहीं इस तरह की कितनी कितनी सारी चीजें होने लगी, और हमको लगने लगा कि इन सब के माध्यम से हम अपनी अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। लगने क्या लगा, और सच पूछे तो हम ऐसा करने भी लगे, और ज्यादातर लोग ऐसा करने लगे, हमने वैसा भी किया, और वैसा करने के बाद हमें पता लगा कि अरे कुछ समय के बाद कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो वहीं के वहीं हैं जहां हम पहले थे, कुछ भी नहीं बदला। तो फिर हम करें क्या, क्या हम निराश होकर के बैठ जाएं और ये मान लें कि जिंदगी को बदला जाना संभव ही नहीं है, जैसा कि बहुत लोग मान भी लेते हैं, और बहुत लोग इन सारी चीजों को एक तरीके से भाग्य को सौंप देते हैं कि ठीक है ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये भाग्य के भरोसे ही है, इसको नहीं बदला जा सकता है, जो हमारा भाग्य था वो हमें भोगना ही पड़ेगा, और हम सरेंडर कर देते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है मित्रों? सचमुच ऐसा नहीं है, जिंदगी उसके कहीं ना कहीं बीच में है। अपने आप में भी ये चीजें हैं, पहला पार्ट तो है ही, जो धर्म वाला पार्ट है वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट तो है ही, लेकिन उसका चूंकि स्वरूप बदल गया है इसलिए उसमें से जिंदगी को बदलने की क्षमता उसकी चूक चुकी है, कम हो गई है। अगर वो अपने बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, पहले ही जैसी स्थितियों में आ जाए, तो नो डाउट कि वो हमारी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन वहां बदलाव के लक्षण हमें दिखाई नहीं देते। जहां तक भौतिकवादी चीजों की बात है तो वो हमें सुख तो दे सकते हैं, सुख देते भी हैं, लेकिन वो हमारा जो सुख है वो कभी भी आनंद का पर्याय नहीं बन पाता है। होता यह है कि हमें चीजें मिलती हैं, कुछ समय के लिए हमें सुख भी पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सुख पहुंचाने की उसकी क्षमता कम होने लगती है। और ऐसा नहीं कि उसकी क्षमता कम होती है, उसकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती, सच पूछिए तो उस सुख को महसूस करने की जो हमारी क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। अब आप पूछ सकते हैं कि हमारी अपनी क्षमता में कमी क्यों आती है? हमारी अपनी क्षमता में कमी आने का एक बड़ा सिंपल सा और सरल सा कारण यह होता है दोस्तों कि उस वस्तु के प्रति जो हमारी लालसा थी, जो हमारी उत्तेजना थी, जो हमारा बहुत ही घनिष्ठ आकर्षण था, मिल जाने के बाद वो आकर्षण, वह घनिष्ठता, वह लालसा धीरे 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 कमजोर होने लगती है। इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसके प्रति जो हमारी संवेदनशीलता थी वो उतनी गहरी न होकर के धीरे धीरे उथली होने लगती है और जब वो इतनी उथली हो जाती है कि हम उसके आदि हो जाते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो जैसे ही हम किसी चीज के अभ्यस्त होते हैं, उससे जो प्राप्त होने वाला सुख है, या कह लीजिए एक बहुत अच्छा शब्द होगा कि उससे जो मिलने वाला रस है, वह रस गायब हो जाता है। दोष उस वस्तु का नहीं है, दोष हमारी उस इच्छा का भी नहीं है। सच पूछिए कि जहां हम इन चीजों की खोज कर रहे थे, जिसके माध्यम से हम उसको पाना चाह रहे थे, दोष हमारे अपने मैकेनिज्म का है। तो यह हम अपने मैकेनिज्म को समझें कैसे, और ऐसी क्या चीज लेकर आए कि इन सारी चीजों के मिलने पर, या कह लीजिए कि इन सारी चीजों के न रहने पर भी हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बनी रहे। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप मेरी इस बात से कितना इत्तफाक रखेंगे, कितना इस बात के प्रति सहमत होंगे, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो मैं अभी तक के अपने जीवन के इस दौर में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जिसको मैं फाइनली लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं, इसकी बात भी करता हूं, और जिसको केंद्र में रख करके ही मैं अपने विचारों को आगे भी बढ़ाता हूं। और इस पर मैंने काफी टेस्ट भी किए हैं, काफी परीक्षण किए हैं आप कह लीजिए, और वो ये, यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, बदलने का मतलब है बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक उपाय है, और वो उपाय ये है मित्रों, आप अपने विचारों को बदल दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। विचारों को बदले बिना जिंदगी में बदलाव नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य हमारा ये है, या हमारी अज्ञानता ये है, हमारी नासमझी ये है, हमारी गलतफहमी ये है कि हम जिंदगी को तो बदलना चाहते हैं लेकिन बिना अपने विचारों को बदले हुए ही। और जब तक विचार नहीं बदलेंगे, जिंदगी में बदलाव हो सकता है मित्रों, कम से कम मुझे तो, आपके बारे में मैं नहीं जानता, आप सब अपने अपने ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। आप कह सकते हैं कि क्या साहब विचारों को बदलना इतना आसान है? मैं कहता हूं कि शायद सबसे आसान अगर कुछ काम है, सबसे आसान, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे आसान तो वो विचारों को ही बदलना है। हम जो अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ठोकरें खाने के बाद ही अक्ल आती है, अक्ल आती है बसर को ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, तो ये ठोकरें खाने के बाद ही अक्ल आती है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई एक घटना घटती है और वो घटना हमारे विचारों को बदल देती है। विचारों को किस रूप में बदलती है? सच्चाई के रूप में बदलती है। सच्चाई क्या है? कि नहीं, यहां गड्ढा है, गिर जाओगे, यहां ऊंचाई है, ठीक से नहीं चलोगे तो टकरा जाओगे और गिर जाओगे। यही तो ठोकर लगा ना, एक बार ठोकर खाने के बाद फिर आप वहां दोबारा ठोकर नहीं खाते। क्यों? क्योंकि आप जान गए हैं कि यहां एक ऐसी चीज है जिससे टकराने के बाद आप गिर सकते हैं, यानी कि अब उस बात को, उस सच्चाई को, जीवन के उस सत्य को, रास्ते की उस सच्चाई को आपने अपने दिमाग में बसा लिया है, अपने विचारों में रख लिया है। और केवल विचारों में रखा ही नहीं है, विचारों में रखने के बाद आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन में भी आ गए हैं, उसी के अनुसार आप काम भी कर रहे हैं। तो जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क पर चलने की यह हमारी रिक्वायरमेंट है कि जहां इस तरह की ठोकर वाली जगह हो उसे हम देख कर पार करें और बचकर उससे चलें, यह उस यात्रा की रिक्वायरमेंट है। और आप इस रिक्वायरमेंट को जानते हैं, वो आपके विचारों में है, और जानते हैं ही नहीं, विचारों में है ही नहीं, बल्कि चलते समय उसे अपने एक्शन में भी लाते हैं, अपने व्यवहार में भी लाते हैं। तो फिर वो जो अवरोध है, वो अवरोध आपकी यात्रा का अवरोध नहीं बन सकता, बनेगा ही नहीं। दूसरे हो सकते हैं कि उस अवरोध को बहुत बड़ा अवरोध माने, लेकिन आप जब उनकी ये बात सुनेंगे तो आप हंसकर उड़ा देंगे और कहेंगे यार वो भी कोई अवरोध है, मैं तो रोज ही आता जाता हूं, और आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आप अपने सफर को हासिल कर लेने का, अपने मंजिल को पा लेने का, अपने उद्देश्य तक पहुंच जाने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे सच पूछिए तो यह बात यकीनन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि पहली बात है हम अपने विचारों को बदलें। और जैसा कि मैंने आज के इस हिस्से की शुरुआत की थी, मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को आप सबका जितना प्यार मिल रहा है और प्यार देने वालों में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से को बड़े प्रबुद्धता से और बड़ी अच्छे तरीके से जीवन वाले जो बहुत ही प्रौढ़ हैं वहां तक की रेंज है, लड़कियों से लेकर के महिलाओं तक की रेंज है, युवाओं की रेंज है, प्रोफेशनल्स से लेकर के गांव तक के लोगों की रेंज है, उनको अगर ये चीज थोड़ी सी अपने लायक लगती है, वो सुनना पसंद करते हैं, या ऐसे भी मेरे पास मेल आते हैं कि इससे उनमें यह बदलाव आया है, तो मुझे लगता है कि शायद उसका कारण यही एक रहा हो। इसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं वे अपने विचारों को दुरुस्त करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, विचारों को दुरुस्त करते हैं, और जैसे ही विचारों को दुरुस्त करते हैं उनकी जिंदगी में भी कुछ दुरुस्ती आ जाती है और उनको लगता है कि नहीं, ये काम की चीज है, तो अगर मेरे काम की है तो शायद दूसरों के भी काम की होगी, और फिर वो इसकी चर्चा दूसरों से भी करते हैं। इसलिए मित्रों, जिंदगी कोई जादू नहीं है, जिंदगी जीवन एक विज्ञान है, नो डाउट, कलात्मक विज्ञान है या विज्ञानात्मक कला है, आप जो भी कहना चाहें, इन दोनों को मिला दीजिए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी किसी भी बाहरी चीजों की मोहताज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिस्से में इतना ही, फिर हम लोग लगातार इस पर तो बात कर ही रहे हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर, जो AIR न्यूज का चरण है। फ्रेंड्स, कल के न्यूज में दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खबर मुझे लगी उसे लेकर मैं सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग दृष्टि से मैं बात आज करने जा रहा हूं। वैसे भी आपने महसूस किया हो तो पिछले लगभग दो दिनों से मैं खासकर AIR न्यूज वाले हिस्से में एक अलग ही एंगल से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और वो जो मैंने थोड़ा सा अपना एंगल बदला है, हो सकता है कि आप लोगों की पकड़ में भी वो एंगल आ गया हो, और वो ये है कि आप इसे सिविल सर्विस के लिहाज से कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, उसकी बेसिक्स क्या होंगी, उसके बैकग्राउंड क्या होंगे, उसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, किस तरह से सिविल सर्विस के अंतर्गत उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और यदि सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं तो किस प्रकार से आप इस कंटेंट को या इस इवेंट को अपने दूसरे प्रश्नों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज्यादातर इस बात को ध्यान में रख करके घटनाओं की चर्चा कर रहा हूं। आज मैं फिर से एक घटना को लेकर के इसी अपने क्रम को, बातचीत का जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है, इसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपने खबर सुनी, और वो खबर थी खासकर संसद में, खासकर नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर किया हुआ हंगामा। आपको मालूम है कि संसद का सत्र चल रहा है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अब नेशनल हेराल्ड का जो मामला आया है उसकी वजह से कल संसद बहुत अधिक बाधित हुई। नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, इसके बारे में कल हम लोग बातचीत कर चुके हैं, उन्हें उसे दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। अब आप देखिए कि सिविल सर्विस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो स्टूडेंट के सामने होता है, तो चाहे आप मेंस में बैठ रहे हों या इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए हों, उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज, यहां तक कि मैं कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स का ही क्यों ना हो, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपके दिमाग में किसी भी इशू को लेकर कितनी क्लैरिटी है, आप किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी चीज को कितनी स्पष्टता से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को अनुभव है या नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि पहाड़ों के बीच में जो नदियां बहती हैं उनका पानी इतना क्लियर होता है, इतना साफ होता है, शीशे की तरह चमकता है, और अंदर की सारी चीजें दिखाई देती हैं, और देखने के बाद यकीन नहीं होता कि सच में पानी भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये क्लियरिटी की लिमिट है, सीमा है, अधिकतम सीमा है। यानी कि आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप सोच भी नहीं सकते कि सच में क्या विचारों की भी इतनी क्लियरिटी हो सकती है, वैचारिक स्तर पर भी कोई इतना साफ हो सकता है कि जिसके विचार विषय के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट रूप से खानों में बटे हुए हों, जैसे कि शतरंज की विभिषाद बिछी हुई हो। शतरंज के बोर्ड में 64 वो ग्रुप्स होते हैं, आप देखिए स्क्वायर्स होते हैं, और बहुत स्पष्ट रूप से सब अलग अलग होते हैं, उनमें कहीं कोई एक दूसरे का घालमेल नहीं होता, तालमेल तो होता है लेकिन सब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या आपके पास उतनी वैचारिक स्पष्टता है? और मुझे लगता है कि अगर कोई देश के सर्वोच्च ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाह रहा है तो निश्चित रूप से उसके पास इतनी वैचारिक स्पष्टता तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो इस बहुत तटस्थ होकर के और बहुत सही रूप से प्रशासन करने के लायक अपने आप को कैसे बना सकेगा। मित्रों, इतनी बात सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैं ये संसद और नेशनल हेराल्ड के बारे में चर्चा करके और ये किस पर आ गया। मैं इस पर आ रहा हूं जो अंततः आपको इस पर ही पहुंचना पड़ेगा, वो इसलिए कि आपने देखा कि संसद में नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के विवाद हुआ, संसद नहीं चलने दी गई। न्यूज में भी कुछ बातें आई कि कांग्रेस, कुछ दूसरी पार्टीज भी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, या कह लीजिए सरकार पर, हम भारतीय जनता पार्टी न कहें, हम अपनी शब्दावली को भी यहां ठीक करें, पार्टी नहीं है, उसने सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार एक तरीके से बदले की भावना से काम कर रही है, मतलब ये बदले की राजनीति कर रही है और वो चाहती है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत सक्रिय और बहुत प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इसी तरह की कुछ भाषा थी। ये उनका पक्ष है, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कुछ और पार्टियां जो उनका समर्थन कर रही हैं वो इसे एक राजनीतिक नजरिए से देख रही हैं, राइट। ये एक चीज हुई। इसका दूसरा पक्ष देखिए कि फिर हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने जवाब दिया कि जो अखबारों में भी इसके कुछ हिस्से आए हैं कि जो सोनिया जी और राहुल जी और पांच अन्य लोगों को न्यायालय के समक्ष खुद पेश होने के लिए जो समन्स जारी किया गया है वो सरकार ने नहीं भिजवाया है, वो न्यायालय ने भिजवाया है। न्यायालय को लगा कि ये जरूरी है, जब आरोप लगाए गए थे तब आपने देखा कि न्यायालय को लगा कि हाँ कुछ इस पर ऐसा किया जा सकता है, उनको कुछ लगा होगा। तो ये न्यायालय का मामला है, ये सरकार का मामला है ही नहीं, तो सरकार को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है, राइट। यानी कि अरुण जेटली जी ने अब जो बात कही है वो बात किसकी हो गई, न्याय की हो गई, न्यायिक प्रक्रिया की हो गई, राइट। अब तीसरा है संसद, इस मामले को लेकर के संसद को बाधित किया जा रहा है, यानी कि वो जो मामला था एक न्यायालय में जो उठने वाला मामला है, या कह लीजिए कि जिस मामले को जुडिशरी को हैंडल करना है, वो जुडिशरी का मामला यहां आकर के एक प्रकार से पार्लियामेंट का मामला बन गया, और पार्लियामेंट का मामला बनने का देखिए मतलब है कि वो लेजिस्लेचर का मामला बन गया, वो देश का मामला बन गया। तो यहां आपको उसका अब एक तीसरा एंगल दिखाई दे रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या कह लीजिए कि लेजिस्लेचर है। तो अब आप देखिए कि अब इस घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं, इस इवेंट की अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यह इवेंट क्या है। कम से कम आपको अपना स्टैंड तो क्लियर रखना ही होगा, क्या ये लेजिस्लेचर का मामला है, क्या सोनिया जी या राहुल जी और पांच अन्य लोगों की न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का न्यायालय का आदेश क्या किसी लेजिस्लेचर के मामले से जुड़ा हुआ है या किसी राष्ट्रीय मामले से जुड़ा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो कि क्या यह एक प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध है या प्योरली राजनीति पॉलिटिक्स है, उस सेंस में राजनीति नहीं कि पॉलिटिक्स सिनेरियो के सेंस में राजनीति नहीं, प्रति एक प्रतिशोधात्मक राजनीति या रिवेंजफुल एटीट्यूड से किया गया एक्शन है, या फिर तीसरा ये कि चूंकि न्यायालय ने देखा किया तो वो प्योरली एक जुडिशरी का मामला है। जब आप अपने दिमाग में इन तीनों में से बहुत क्लियर कट स्टैंड ले लेंगे तब आपके दिमाग में वो क्लियरिटी आएगी जिसकी चर्चा मैंने अभी कही कि पहाड़ के नदी में बहते हुए पानी की तरह बिल्कुल साफ, तब आप इसको ले सकेंगे और समझ सकेंगे और तब फिर आप इस बात का फैसला कर सकेंगे कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। मित्रों देखिए, हर चीज के दो तीन पहलू होते हैं, दो तीन पक्ष, दो तीन क्या, कई कई पहलू और पक्ष होते हैं, इसके भी हैं और होंगे ही, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी होती है और ताकत भी होती है, और इसी मंथन से कुछ न कुछ नई चीज भी निकलती है, राइट। अगर आपसे यह पूछा जाए कि किसका स्टैंड सही है किसका स्टैंड गलत है, तो अगर आप इनमें से कोई एक बात लेकर चलेंगे तब तो आप अपने स्टैंड को क्लियर कट जस्टिफाई कर सकेंगे, भले ही वो गलत हो, लेकिन आप अपने स्टैंड को सही ठहरा देंगे। लेकिन यदि आप कहीं लेजिस्लेचर को ठीक मानेंगे, कहीं आप जुडिशरी को मानने लगेंगे, फिर कहीं आप पॉलिटिक्स को ले आएंगे, तो देखेंगे कि गड़बड़ हो जाएगा। और यही गड़बड़ी सच पूछिए तो मेंस के ऑप्शन के सिलेक्शन में हमको दिक्कत पहुंचाती है, हमारे दिमाग में जो क्लैरिटी नहीं है, यही गड़बड़ी मेंस के आंसर लिखने में हमारे साथ धोखा करती है। क्योंकि वो जब सीधे सीधे पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं, आप अपना अपने विचार बताइए, उपाय सुझाइए, तो हम बहुत चूंकि क्लियर नहीं है अपने आप में, तो बहुत सही उपाय नहीं सुझा पाते। और यही कमजोरी हमें कहीं ना कहीं जब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे होते हैं तब हमें नुकसान पहुंचाती है। तो मित्रों, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक जुडिशरी का स्टैंड लेते हैं, तो जुडिशरी के स्टैंड के आधार पर आप बहुत साफ तौर पर कहेंगे कि नहीं, यहां पर जो सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं और जो तीन चार पांच लोग और हैं, उनको एक सामान्य नागरिक की तरह न्यायालय का सम्मान करते हुए वहां जाएं और वहां जो भी पूछा जाता है बता दें, बात खत्म हो गई। वो भी एक सामान्य नागरिक है और हमारे यहां समानता का सिद्धांत है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स वाला लेंगे तो कहेंगे कि बिल्कुल ये तो रिवेंजफुल एटीट्यूड है और ऐसे तो कोई भी पॉलिटिशियन किसी के बारे में भी कुछ भी बदला ले सकता है जो सत्ता में होगा, तो नहीं नहीं ऐसी चीजों का विरोध होना चाहिए, उन्हें नहीं जाना चाहिए। आप अगर लेजिस्लेचर का हिस्सा का भाग बनना चाहते हैं तो आप वहां भी कह सकते हैं कि नहीं, कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, देश की आजादी दिलाने वाली पार्टी है, इतने साल तक शासन किया है, नेहरू गांधी जी जैसे लोग इसके सदस्य रहे हैं और हमारी डेमोक्रेसी है। और ऐसी स्थिति में अगर इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और महत्वपूर्ण नेताओं के प्रति ये प्रतिशोधात्मक अगर एक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए और संसद में होना चाहिए ताकि सरकार इसके बारे में जवाब दे। तो वहां भी आप स्टैंड कर सकते हैं, वहां भी आप स्टैंड ले सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या स्टैंड लेते हैं। मित्रों, सिविल सर्विस की तैयारी में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा और ये बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, लंबे समय तक तैयारी करते हैं, उन्हें चीजें भी मालूम होती हैं और सच पूछिए तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद जरूरत से ज्यादा ही मालूम होती है। और ये जरूरत से ज्यादा मालूम होना ही उनके लिए उसी तरह से नुकसानदेह हो जाता है जैसे कि कोई जरूरत से ज्यादा खा ले, भूख लगने पर अक्सर हम ऐसा ही करते हैं और उस चक्र में हम फिर फंस जाते हैं। तो मित्रों, ये मैंने एक इवेंट को लेकर के आपसे सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में कुछ चर्चा की है और मुझे यकीन है कि तो विश्वास भी है कि यदि आप इस आधार पर किसी भी इश्यू को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस पर पकड़ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप चीजों को सही संदर्भों में लेने भी लगेंगे। और फिर जब आप डिसीजन लेंगे, उपाय सुझाएंगे, अपना स्टैंड एस्टैब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना फर्म होगा, उसके पीछे आपके विचारों की ताकत होगी और तर्क वितर्क के द्वारा आप उसे सिद्ध कर सकेंगे। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो खासकर हमारी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा जी, वो अफगानिस्तान गई हुई हैं, आपको पाकिस्तान गई हुई हैं, वहाँ हार्ट ऑफ एशिया के पर सम्मेलन हो रहा है। देखते हैं कि उस सम्मेलन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात होगी, जो उनके काउंटर पार्ट हैं विदेश मंत्री, उनसे भी मुलाकात होगी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान से बातचीत का ये जो सिलसिला है, इसी तरह से घटनाक्रम हमारे दिमाग में आने भी चाहिए, खासकर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो बुरी तरह से बाधित हो गया था। फिर पेरिस में हमारे दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिले, वहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स हैं दोनों के दोनों, फिर वो आगे चल करके अभी बैंकॉक में मिले, वो सिलसिला फिर आगे बढ़ा और अब दोनों देशों के विदेश मंत्री फिर से अब वहां मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये फिर से एक वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है और डेफिनेटली एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में डिप्लोमेटिक अप्रोच, डिप्लोमेटिक समझ रखने वाले एक स्टूडेंट या व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तीसरी जो घटना थी मित्रों, न्यूज जो थी वो खासकर दिल्ली में अब घोषणा कर दी है सरकार ने कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक अब जो सम और विषम नंबर वाली गाड़ियां जो चलनी थी, आप लोगों ने यह खबर तो पढ़ी ही होगी, मैं इसकी पहली बार चर्चा कर रहा हूं, उसका प्रयोग शुरू किया जा रहा है। यानी कि जो सम नंबर वाली, जिनके आखिरी डिजिट सम वाले होंगे, आखिरी डिजिट सम वाला होगा, वो सम वाली तारीख पर चलेंगी। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का आखिरी नंबर है 8, तो वो दो तारीख को चलेगी, चार तारीख को चलेगी, छह आठ दस बारह सम डेट वाले पे चलेगी, और जो विषम संख्या वाली होगी विषम तारीख को चला करेगी, खासकर सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक। और उसका पर्पज ये कि किस तरीके से दिल्ली में गाड़ियों के कारण जो सबसे इतना भयानक प्रदूषण हो रहा है, जिसको लेकर के लगातार न्यायालय अपनी बात कह रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर संकट आने लगा है, पूरी दुनिया में सच पूछिए तो दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा होने लगी है, वो थोड़ी सी कम हो सके, यानी कि गाड़ियों की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या डेफिनेटली आधी हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, अभी प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है, क्योंकि बड़े दूसरे तरह के संकट आ सकते हैं, जिनके पास एक गाड़ी है वो दो गाड़ी ले सकते हैं, या जिनके पास दो गाड़ी हैं वो अपने नंबर चेंज कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली इसमें बहुत सी प्रॉब्लम अभी आने वाली हैं। लेकिन प्रयोग तो किया ही जाना चाहिए, तो इस प्रयोग का भी स्वागत होना चाहिए कि किस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के कदम उपयोगी हो सकते हैं। और मित्रों, एक आखिरी जो छोटी सी खबर थी वो तमिलनाडु में फिर से कुछ हिस्सों में आप देख रहे हैं कि पानी बरसने की संभावना है, संकट आ रहे हैं। और कल की न्यूज में तो खासकर आपने देखा कि बांधों में जो पानी इकट्ठा हो रहा है उन पानी को छोड़ने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो बड़े बांधों के जो संकट होते हैं उनको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और इसी संदर्भ में आप खासकर अगर नदियों को जोड़ने का जो अभियान भारत ने शुरू किया है उस संदर्भ में आप तमिलनाडु वाले प्रसंग की चर्चा कर सकते हैं। तो मित्रों, न्यूज के बारे में इतना ही, न्यूज पेपर्स के बारे में चर्चा करने के लिए अभी वक्त नहीं है, न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होंगी, वो आप लोग देख लेंगे, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मैं आता हूं मित्रों सीधे सीधे ईमेल पर। एक मेल है अमरजीत सिंह का, जो गंगानगर से हैं, उन्होंने लिखा है कि आरएएस परीक्षा 2013 इन्होंने सफलता हासिल की है। अब मुझे नहीं मालूम कि आरएएस 2013 क्या परीक्षा है, किस तरीके का है। तो अमरजीत सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार भी कि आपने इसके लिए मुझे सूचित किया। मित्रों, बहुत से मेल आए हैं, और इसी जितने भी स्टूडेंट्स ने, श्रोताओं ने मेल लिखे हैं, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ नाम हैं, प्रिंस कुमार जो बेगूसराय बिहार से हैं, गणपत लाल आप जैसलमेर से हैं, सचिन ग्वालियर से हैं, शैंकी कोटद्वारा उत्तराखंड से हैं, ओपी जाट अजमेर राजस्थान से हैं, पंकज कुमार शुक्ल नासिक से हैं, सुरेंद्र प्रजापति, नीतीश कुमार बेगूसराय से हैं, अशोक कुशवाहा टीकमगढ़ से हैं, सोनिया दांगी जयपुर से हैं, चंचल अग्रवाल मथुरा से, रजत बोलपुर से, और नारायण वत्स चंडीगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में एक मेल है दोस्तों सरला खरे का, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ से हैं, ये अभी जब मैं रायपुर में था तब ये स्टूडेंट के रूप में मिलने भी आई थी। तो सरला, बहुत बहुत धन्यवाद मेल लिखने के लिए, बहुत बहुत आभार कि आपने उन क्षणों को फिर से याद किया है। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस डेली ऑडियो को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूँगा, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।